हेलो लिसनर्स, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। मैं अविशा और मेरे साथ है शैलेंद्र सर। हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कहानी जो हर फीमेल के लिए कभी न कभी एक परेशानी हो सकती है। तो हम बात करेंगे आज स्टॉकिंग पे, या जिसे साफ भाषा में कहा जाए तो किसी लड़की का पीछा करना भी कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी।
गुड मॉर्निंग अभिषा।
गुड मॉर्निंग सनी।
यार क्या बात है, आवाज में आज दम नहीं है, जरा फिर से कहना।
गुड मॉर्निंग।
यार क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है?
कुछ प्रॉब्लम्स हैं यार।
ओके, अच्छा चलो काम शुरू करने के पहले चाय पी कर आते हैं।
ओके।
अभिषा क्या बात है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान सी रहती हो।
है कुछ बातें यार जो मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रही हैं। अगर घर वालों को बताने का सोचती हूँ तो फिर लगता है कहीं जॉब ना छूट जाए, और अगर किसी फ्रेंड से शेयर करने का सोचती हूँ तो किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ।
देखो अविशा, प्रॉब्लम शेयर ना करने से बढ़ती ही जाती है। आखिर मैं तुम्हारा इतने सालों से अच्छा दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकती हो।
पता नहीं तुम समझोगे या नहीं।
अगर मैं ना भी समझ पाया तो जितनी मदद हो सकेगी उतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए।
एक लड़का है यार जो मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है, और वहाँ तक तो ठीक था, अब चीज़ें ना बढ़ने लग गई हैं। वो अब मुझे सोशल मीडिया पे भी मैसेज करता है अलग अलग अकाउंट से।
अच्छा, क्या वो पहचान का है, मतलब परिवार का या आस पास का या कोई दोस्त वगैरह?
नहीं, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। मैंने अपनी रूममेट से भी पूछा था, वो भी उसको नहीं जानती। और बाकी ऑफिस में इतना काम रहता है कि मैं सीधे ऑफिस आती हूँ घर से, और फिर ऑफिस से सीधे घर जाती हूँ। और तुम तो जानते ही हो ना, ऑफिस में काम का कितना प्रेशर होता है।
अविशा कोई बात नहीं, देखो ये नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूँ और लॉ फील्ड से हूँ, तुम मुझे बता सकती थी।
मैं डर गई थी यार, और फिर ना मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी।
अच्छा ठीक है, तो देखो ये बताओ कि क्या वो अभी भी तुमको परेशान कर रहा है, या रास्ता रोकता है, या सोशल मीडिया में मैसेजेस भेजता है?
हाँ, वो अभी भी मुझे फॉलो करता है, और ना फेसबुक पे भी एक्टिविटीज थोड़ी अजीब हो गई थी। वो मुझे हर बार अलग अलग अकाउंट से मैसेज कर रहा था, तो मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया। फिर उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे भी मुझे अलग अलग नंबर से मैसेज और कॉल करना चालू कर दिया। तो अब मैं वो तो डीएक्टिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के और सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस और ग्रुप्स उसी पे है ना।
ठीक है, देखो अब परेशान मत हो। यदि अब वो तुम्हारा रास्ता रोकता है तो तुम दो काम कर सकती हो। पहले तो तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे मदद के लिए आवाज लगानी है, जिससे कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सके। या दूसरा तुम्हारे पास विकल्प ये है कि तुम महिला हेल्पलाइन नंबर जो 1091 है वहाँ पे कॉल कर सकती हो, या डायल 100 करके पुलिस से भी सहायता प्राप्त कर सकती हो। देखो अविशा, यहाँ तक कि ये सुविधा तो अब ट्रेन में भी दे दी गई है कि अगर कोई लड़की को ट्रेन में परेशान करता है तो वो 1091 पे कॉल करके हेल्प मांग सकती है।
यार पुलिस स्टेशन में ना कोई एक्शन नहीं होता है, और अगर मेरा नाम आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ जाएंगी फिर।
देखो अविशा, मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये सलाह दूंगा कि पहले तो तुम ये कोशिश करो कि घर में किसी को बताओ, और प्राथमिक स्तर पर कोई तुम्हारा घर का व्यक्ति आकर उससे समझाए। हो सकता है समझाने में ये बात बन जाए और आगे कोई एक्शन ना लेना पड़े।
ठीक है, कुछ लोग हैं जिनसे मैं शेयर कर सकती हूँ, पर मम्मी पापा से तो नहीं कर सकते यार ये बातें शेयर।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसकी शिकायत हम नजदीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं, और पुलिस बाउंड है कि वो अपनी कंप्लेंट लिखे। तो पहले तुम ये काम करो कि पहले जिसके ऊपर तुम्हें घर में भरोसा है उससे एक बार बात करके तो देख लो, फिर इसके बाद हम दूसरा कदम उठाएंगे। देखो दूसरे कदम में हम नजदीकी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 354D के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की का, किसी स्त्री का पीछा करता है उसकी सहमति के बिना, उसके कंसेंट के बिना, तो वह स्त्री या लड़की नजदीकी पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। और यदि व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो प्रथम दोष सिद्धि, अगर पहली बार वो दोषी साबित होता है तो यहाँ तक कि 3 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है, और यदि वही व्यक्ति दूसरी बार ऐसा अपराध करे तो उसमें 5 साल तक का कारावास का प्रावधान है। मतलब 5 साल तक की उसको जेल हो सकती है। इसके अलावा तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि आईटी एक्ट की धारा 66B है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करके या भी किसी भी चीज का प्रयोग करके व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज तुम्हें भेजता है, कोई सूचना तुम्हें भेजता है और परेशान करता है, तो उसमें भी ये प्रावधान है कि 3 साल तक की सजा और इवन 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
ठीक है, ये सब तो मुझे पता नहीं था यार। और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये लीगल एक्शंस लेने के लिए?
हाँ जरूर, क्यों नहीं। समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, मैं जरूर इसमें एक्शन लूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता था कि आज हमने चर्चा की महिलाओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण और जागरूकता को लेके। आज समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी लड़कियां हैं जो किसी न किसी कारण से, जैसे कि बेइज्जती के कारण या दूसरे के द्वारा परेशान किए जाने के कारण, अपनी प्रॉब्लम दूसरे तक शेयर नहीं कर पाती या उनको पता ही नहीं होता है कि वो अपने समस्या से कैसे निजात पाएं, अपने प्रॉब्लम से कैसे पीछा छुड़वाएं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे समाज को और हमको स्वयं महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और वो हमारी सदैव प्राथमिक स्तर पर जिम्मेदारी बनी रहेंगी। जैसा कि कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, यूं पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसलिए दोस्तों आज मेरा जो संदेश है आपसे यही है कि सतर्क रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अगर कोई समस्या आती है तो उसका डट कर मुकाबला करें। जय हिंद, जय भारत।
शैलेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और लिसनर्स, आगे भी हम ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा शो किस्से कानून के।